केशव ने मालविका को जेल से बाहर निकलवाया था। केशव ये नहीं जानता था कि मालविका बहुत ज्यादा शातिर है। उसने केशव के प्लान को भी परे बिठा दिया था। केशव के साथ मिले कांस्टेबल ने सोचा कि हॉस्पिटल जाने के बहाने वो रास्ता बदलकर मालविका को उनके पास ले आएगा, लेकिन उससे पहले ही मालविका ने कांस्टेबल पर हमला किया और गाड़ी के बाहर कूद गई थी। बीच में पार्टीशन होने की वजह से ड्राइवर को कुछ पता नहीं चला और वो गाड़ी चलाए जा रहा था। वहीं मालविका ने नीचे उतरकर अपने कपड़े झाड़े। आयशा के साथ जो भी हुआ था उसका जिम्मेदार मालविका ईशिका को समझती थी। इसका एक ही मकसद था, ईशिका को बर्बाद करना। राधिका और ईशिका, तुम दोनों की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। आदर्श मर गया, आयशा इस दुनिया में नहीं रही। आदर्श सिंघानिया के मरने का मुझे दुख नहीं है, मैंने हमेशा उसका साथ दिया। फिर भी उसने ज़रूरत पड़ने पर मुझे और मेरी बेटी को अकेले छोड़ दिया, लेकिन मेरी आयशा की मौत को मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरी बेटी, जिसके लिए मैंने इतना सब किया, उसे तुम लोगों ने मार दिया, मालविका ने गुस्से में गहरी सांस लेकर कहा। लोगों की नज़रों से बचने के लिए मालविका को सबसे पहले अपने कपड़े बदलने थे। वो कैदियों वाले कपड़े में थी, लेकिन इस वक्त मालविका जिस जगह पर थी वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर तो चलकर ही रास्ता पार करना पड़ेगा, मालविका ने खुद से कहा। वो थोड़ा आगे पहुंची तो एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी को देखकर मालविका की आंखों में उम्मीद आ गई थी, शायद वो उनसे मदद मांग सकती थी। मालविका दौड़कर गाड़ी के पास आने लगी। उसे गाड़ी को रोकने का मौका नहीं मिला, पहले ही गाड़ी उसके पास आकर रुक गई थी। मालविका कुछ समझ पाती उससे पहले गाड़ी में बैठे लोगों ने उसे अंदर खींच लिया था। वहीं दूसरी तरफ पूरी रात अभिमन्यु ईशिका के साथ सिंघानिया मेंशन में था। सुबह के लगभग 7:30 बजे के करीब ईशिका की नींद टूटी तो अभिमन्यु उसकी बाहों में किसी बच्चे की तरह सिमटकर सोया हुआ था। ईशिका ने प्यार से अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा और उसके माथे पर बिखरे बालों को सही करने लगी। तभी उसने महसूस किया अभिमन्यु का शरीर आग की तरह तप रहा था। ईशिता ने जल्दी से उसे छूकर चेक किया, अभिमन्यु को तेज बुखार था। ईशिता उसके पास से उठने को हुई तभी अभिमन्यु ने बंद आंखों से बड़बड़ाकर कहा, प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तुम क्या रात भर सोए नहीं थे? तुम्हें मुझे जगा लेना चाहिए था, ईशिका ने नाराजगी जताते हुए कहा। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था, मैं ठीक हूँ और तुम मेरे पास रहोगी तो ठीक ही रहूंगा, अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा। पागल मत बनो, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, बिना खाए मैं तुम्हें कोई मेडिसिन भी नहीं दे सकती। ऐसा करती हूँ, पानी और टॉवल लेकर आती हूँ, बस थोड़ा टाइम दो, ईशिका ने उसे समझाया और धीरे से उसका हाथ खुद पर से अलग कर दिया। ईशिका नीचे पहुंची तब हाउस हेल्पर के अलावा और कोई नहीं था। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और एक बोल में ठंडा पानी और साफ तौलिए के साथ ऊपर अभिमन्यु के कमरे में पहुंची। उसने अभिमन्यु की शर्ट की बटन खोल दी थी और फिर उसके शरीर पर ठंडे पानी से भिगाकर टॉवल रखा। अभिमन्यु को बीमार देखकर ईशिका परेशान होने लगी। वो पिछले 7-8 महीनों से अभिमन्यु के साथ थी, उसने कभी उसे इस तरह टूटा हुआ या बीमार नहीं देखा था। हाँ, जब उसने डिवोर्स की बात कही थी तब अभिमन्यु जरूर परेशान हो गया था, पर इस कदर बीमार कभी नहीं। क्या वो लोग तुम्हारे लिए इतना मायने रखते हैं? ईशिका ने अचानक पूछा। क्या दादी और मेरी कोई वैल्यू नहीं है जो हमारा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी बातें कई बार सीने में तीर की तरह लगती हैं। मेरा यकीन करो, मैं ठीक हूँ, बस ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से मुझे फीवर हो जाता है, अभिमन्यु ने आंखें खोलकर अपनी सफाई में कहा। अगर ऐसा है तो सबको साबित कर दो कि अभिमन्यु राजवंश कौन है, वो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकते हैं, ईशिका ने सख्त आवाज में कहा। अभिमन्यु की ऐसी हालत करने वाले को वो आसानी से जाने नहीं दे सकती थी। वो जानती थी कि अभिमन्यु इतना केपेबल है कि खुद उनसे बदला ले सकता है। मैंने ऑलरेडी उनकी हालत खराब कर दी है, तभी उन्होंने गुस्से में मुझे भला बुरा सुनाया, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर वही ना दिखने वाली स्माइल थी। ईशिका ने आगे कुछ नहीं कहा, हालांकि वो अभी भी उसकी बातों से कन्विंस नहीं हुई थी। लगभग आधे घंटे बाद अभिमन्यु का बुखार काफी हद तक काम हो चुका था। ऐसा करो, तुम नहा लो, मैं खाने के लिए कुछ देखती हूँ, मेडिसिन लेकर राजवंश विला चलते हैं, ईशिका ने सीरियस टोन में कहा। अभिमन्यु ने उसकी बात पर सिर हिलाया और सीधा बाथरूम में चला गया। ईशिका ने उसकी उठने में हेल्प की थी। नहाने के बाद अभिमन्यु बाहर आया तो उसने देखा ईशिका पहले से ही तैयार थी और उसने उसके लिए हेल्थी ब्रेकफास्ट तक बना रखा था। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना मिसेज राजवंश, इतने सारे सपने दिखाए और कुछ नहीं कर पाया, अभिमन्यु ने मायूसी से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने दिल की ख्वाहिश कभी भी पूरी कर सकती हूँ, बशर्ते मुझे मेरा पति सही चाहिए, ईशिका ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया और अभिमन्यु को अपने पास आने का इशारा किया। ईशिका अभिमन्यु को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, अभिमन्यु भी बीच बीच में उसे खिला रहा था। अभिमन्यु को मेडिसिन देने के बाद ईशिका उसके साथ राजवंश विला पहुंची। उर्वशी नकुल से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही थी, जैसे ही वो अंदर आए, उर्वशी जल्दी से अभिमन्यु के पास आई और उसकी कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे और पति के साथ अच्छा नहीं किया है अभिमन्यु राजवंश। तुम हमेशा से ही राजवंश एम्पायर के सारे शेयर्स अपने नाम करना चाहते थे। पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे ना इन सबकी? मेरे पति और बेटे को बेवजह फंसा दिया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगी अभिमन्यु। उर्वशी के मुंह से जैसे ही बच्चे का जिक्र सुना, अभिमन्यु की आंखें सर्द होने लगी। उसने उर्वशी के हाथ झटके और उसी सर दौरे के साथ कहा, क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना। तुम सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना कि तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। मुझे सब पता है। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ अभिमन्यु, मेरे पति को जेल से बाहर निकालो, नक्श को उसकी पोजीशन लौटाओ, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, उर्वशी ने सीधे सीधे धमकी देते हुए कहा। अभिमन्यु, जो हमेशा बिल्कुल शांत रहता था और स्माइल भी बिल्कुल छोटी सी करता था, अचानक वो जोर से हंस पड़ा। उसे किसी ने भी इस तरह हंसते नहीं देखा था। उर्वशी के दिल में अभिमन्यु की हंसी खौफ पैदा कर रही थी। वहीं ईशिका भी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। अचानक अभिमन्यु हंसते हुए रुका। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने सख्त आवाज में कहा, तो आपको लगता है कि आप मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं? आज मैं आपको सीधा चैलेंज करता हूं, अपने पति को जेल से बाहर निकलवा कर दिखा दो। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, मैं खुद अपनी सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। रही बात नक्श की, तो अब उसकी राजवंश एम्पायर में कोई जगह नहीं है। अभिमन्यु ने बहुत बड़ी बात कही थी। उसने सीधे अपनी सीईओ की पोजीशन दांव पर लगा दी थी। उर्वशी ने सिर हिलाकर कहा, बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस बार तुमने। नकुल को तो मैं अभी थोड़ी देर में जेल से बाहर निकलवा लूंगी, पर तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। रही बात तुम्हारे बच्चे की, तो एक चैलेंज मैं भी करती हूँ, वो इस दुनिया में कभी नहीं आ पाएगा। अभिमन्यु ने उसकी बातों को इग्नोर किया और वहां से अंदर जाने लगा, लेकिन ईशिका के दिल में उसकी बातें घर कर गई थी। ऐसे ही उसे डर लग रहा था कि जो उसके साथ हुआ वो उसके बच्चे के साथ ना हो। ऊपर से उर्वशी का इस तरह धमकी देना उसे परेशान कर रहा था। जैसे ही अभिमन्यु और ईशिका उर्वशी से थोड़ा आगे गए, ईशिका चलने की बजाय वहीं रुक गई थी। अभिमन्यु उसके पास रुका और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आसपास इतनी टाइट सिक्योरिटी कर दूंगा कि खुद मुझे तुम तक पहुंचाने के लिए उन सभी सिक्योरिटी से गुजरना होगा, तो बाकी किसी की औकात नहीं होगी तुम तक आने की। फिर भी डर लग रहा है, ईशिका ने धीमी आवाज में कहा।
अगर लग रहा है तो खुद के दिल को संभालो। तुमने कहा था ना कि खुद को प्रूफ करो कि अभिमन्यु राजवंश कौन है। बस मुझे 24 घंटे का टाइम दो। राजवंश टेरिटरी में से मैं हर उसे शख्स को निकाल दूंगा जो तुम्हारे लिए खतरा साबित होगा। अभिमन्यु ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर वादा किया। आज उसने एक दिन में दो बड़े दावे किए थे। पहले उसने उर्वशी को चैलेंज किया था कि वो कभी नकुल को जेल से बाहर नहीं निकाल सकती, तो दूसरी तरफ उसने ईशिका को प्रॉमिस किया था कि 24 घंटे के अंदर वो राजवंश टेरिटरी में से उस हर शख्स को बाहर निकाल देगा जो उनके खिलाफ है। ईशिका को अभिमन्यु के प्रॉमिस पर पूरा यकीन था। उसने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों फिर राधिका और वसुधा के पास पहुंचे। वसुधा अभिमन्यु के लिए बहुत परेशान थी। जैसे ही उसने अभिमन्यु को देखा तो वो जल्दी से आकर उसके गले लग गई। उन्होंने नम आंखों से कहा, कहाँ थे तुम लड़के? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मैं परेशान हो जाती हूँ? फिर मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? बस कुछ कामों में उलझ गया था दादी, और फ़ोन मेरे पास नहीं था, अभिमन्यु ने उससे अलग होकर कहा। अभिमन्यु भले ही अपने मुंह से कुछ न बताएं, लेकिन चेहरे से परेशान लग रहा था। वसुधा को समझते देर नहीं लगी थी। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, तबीयत खराब है तुम्हारी, खाना नहीं खा रहा था क्या? थके हुए लग रहे हो। हाँ, थोड़ा थक गया हूँ, पर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, अभिमन्यु ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। राधिका भी वहीं पर मौजूद थी। उन्होंने ईशिका से आँखों ही आँखों में सब ठीक होने का पूछा, तो ईशिका ने पलके झपकाकर उन्हें सब ठीक होने का आश्वासन दिया। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी पार्थ वहाँ आ गया। उसने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, अपने ठीक होने का तो तुमने बता दिया अभिमन्यु, लेकिन एक बार दादी और आंटी से भी पूछ लो कि वो कैसी है। कल रात प्रशांत राजवंश ने उन पर सीधा सीधा हमला करने की कोशिश की थी। पार्थ और अभिमन्यु में एक बात कॉमन थी कि वो दोनों ही प्रशांत को डैड कहकर नहीं बुलाते थे। पार्थ के बताने पर अभिमन्यु ने हैरानी से राधिका और वसुधा की तरफ देखा। हाँ, कल रात आंटी गुस्से में उनके पास गई थी, तब प्रशांत राजवंश गुस्से में अपना आपा खो बैठे थे। वो तो पार्थ सही वक्त पर आ गया, वरना न जाने वो हमारे साथ क्या कर गुजरते। राधिका ने उसे सब कुछ बताया। उन सब की बातों से अभिमन्यु को एक बात समझ आ गई थी कि अब राजवंश टेरिटरी में रहने वाले लोग उनके पूरी तरह खिलाफ हो गए हैं। वसुधा उनका साथ दे रही थी, तो प्रशांत भी खुलेआम बगावत पर उतर आया था। बस 24 घंटे इंतजार कीजिए, फिर हम सब साथ में मेन विला में रहेंगे, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा। वही ईशिका हैरान थी कि अभिमन्यु इन 24 घंटे में ऐसा क्या करने वाला था जो उर्वशी,
नक्श और प्रशांत घर छोड़कर चले जाते। नकुल को तो उसने रास्ते से हटा दिया था, पर अब ये देखना था कि बाकी लोगों को अभिमन्यु वहां से कैसे निकालता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आई नो एक लंबा गैप हो गया, पर मैंने लिखना नहीं छोड़ा है। घर में किसी की शादी की वजह से ऐसा हुआ, और हाँ, मैं अपनी कोई कहानी अधूरी नहीं छोड़ती हूँ। चलिए अब आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, चैप्टर्स रोज देने की कोशिश करूँगी। गोल्डन ट्रैप ऑफ बिलियनेयर का पार्ट इवनिंग तक आ जाएगा।